السلام علیکم. یہ پارٹ 10 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز قمر خلیل, پیشکش محمد اظہر, مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10. یس سر, ٹھیک ہے سر, جیسے آپ کا حکم سر. کرنل ہیمر نے اسی طرح سے مودبانہ لہجے میں کہا اور کارک فلے نے اس سے رابطہ ختم کر دیا. اس کے چہرے پر قدرے اطمینان تھا کہ ابھی 18 ٹینکر 20 کیمپ میں ہی موجود تھے, جن میں سے کسی ایک ٹینکر میں پاکستانی ایجنٹ چھپے ہوئے تھے. کرنل ہیمر اب اس وقت تک ان ٹینکروں کی نگرانی کرتا رہے گا جب تک کہ ہارگن اور اس کا گروپ 20 کیمپ میں نہ پہنچ جاتا. اور ایک بار ہارگن اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے تو پھر عمران اس کے ساتھی اس کے ہاتھوں سے کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکیں گے. تھوڑی دیر بعد جب ٹینکر رکا تو عمران نے اپنے ساتھیوں کو فوراً گیس ماسک اتار کر ٹینکر سے باہر نکلنے کا کہہ دیا اور اس نے خود بھی چہرے پر سے گیس ماسک اتار دیا. گیس ماسک چونکہ ٹینکر کے پیندے کے قریب ایئر فلٹر سے منسلک تھے اور ان کے پائپ زیادہ لمبے نہیں تھے, ورنہ عمران اس کے ساتھی تیل کی سطح پر آ کر گیس ماسک اتارتے. جیسے ہی عمران نے ماسک اتارا اس نے فوراً سانس روکا اور پھر وہ اٹھا اور ہاتھ پاؤں مار کر تیرتا ہوا تیل کی سطح پر آ گیا. سطح پر آتے ہی اس نے تیل سے سر نکالنے کے باوجود سانس لینا شروع نہیں کیا تھا. تیل انتہائی بدبودار تھا اور اس میں زہریلی گیس کے اثرات تھے. اگر وہ سانس لیتا تو زہریلی گیس اس کے پھیپڑوں میں چلی جاتی جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی. عمران نے اوپر آنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت دے دی تھی کہ وہ اس وقت تک سانس روکے رکھیں گے جب تک کہ وہ ٹینکر کا اوپر والا ڈھکن نہیں کھول لیتے. اس کی آنکھوں پر گاگل لگی ہوئی تھی جس کے شیشے اس نے ہاتھوں سے صاف کر لیے تھے تاکہ اسے باہر دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تیل سے سر نکالتے ہی اس نے گاگل کی سائڈ میں لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اچانک شیشوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور شیشوں سے نیلے رنگ کی روشنی ابھرنے لگی. عمران نے دوسری طرف کا ایک اور بٹن پریس کیا تو اسے ٹینکر کے باہر کا منظر واضح طور پر دکھائی دینے لگا. اس نے سر موڑ موڑ کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا. ٹینکر ایک ویران پہاڑی علاقے میں کھڑا تھا اور وہاں چار خاکی لباس والے مسلح افراد کھڑے تھے جو پہاڑی کی ایک چٹان کے پاس بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. عمران نے گاگل کی کراس ویژن گلاسز سے چاروں طرف کا جائزہ لیا. ان چار مسلح افراد کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ چاروں ٹینکر سے خاصے فاصلے پر تھے. کراس ویژن گلاسز اس نے شروع سے ہی لگا رکھا تھا لیکن چونکہ وہ پہلے تیل کے اندر تھا اس لیے وہ اس کا ویژن سسٹم آن کرنے کے باوجود باہر نہیں دیکھ سکتا تھا. اب چونکہ وہ تیل سے باہر آ گیا تھا اس لیے وہ اس خصوصی گلاسز والی گاگل سے آسانی سے ٹینکر کے باہر بھی دیکھ سکتا تھا. ٹینکر کے اوپر درمیانی حصے میں ایک ایئر ٹائر ڈھکن لگا ہوا تھا جسے سے اوپر سے ہی کھولا جا سکتا تھا, لیکن چونکہ عمران کو ٹینکر کے اندر سے کسی بھی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنا پڑ سکتا تھا اس لیے اس ڈھکن کو اندر سے بھی کھولنے کی سیٹنگ موجود تھی. وہ تیرتا ہوا ڈھکن کے عین نیچے آ گیا. ڈھکن کے دائیں طرف ایک مڑا ہوا تار اندر آ رہا تھا جس کے کھینچنے سے باہر سے لاک کھل جاتا تھا اور ڈھکن خود ہی اوپر اٹھ جاتا تھا. عمران نے تار کو موڑ کر اوپر کی طرف اٹھا رکھا تھا تاکہ اگر کوئی ٹینکر کو اندر سے چیک کرنا چاہے تو اسے وہ تار دکھائی نہ دے. عمران نے تار پکڑا اور پھر اس سے پہلے کہ تار کو جھٹکا دے کر باہر کا لاک کھول کر ڈھکن اوپر اٹھتا اس نے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تکونا سا گیس بم نکالا. اس نے بم پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو بم پر ایک بلب سا فلش ہونا شروع ہو گیا. عمران نے زوردار جھٹکا دے کر ڈھکن کے ساتھ لگا ہوا تار کھینچا تو اچانک تیز گیس نکلنے کی آواز سنائی دی اور ڈھکن اچھل کر मुड़ता हुआ टैंकर ही छत से टकराया। गैस प्रेशर और ढक्कन के छत से टकराने की आवाजें सुनकर चारों फौजी बुरी तरह से चौंक पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, इमरान का हाथ हरकत में आया और इसके हाथ से बम निकलकर ठीक इनके करीब जा गिरा। एक हल्का सा धमाका हुआ और वो चारों चकराते हुए वहीं गिरते चले गए। इस बम से बेरंग गैस निकली थी जिसकी तेज कड़वी बू ने इन्हें एक लम्हे में बेहोश कर दिया था। इमरान ने सर घुमाकर देखा तो इसके साथी भी तेल से सर निकाल चुके थे। इमरान ने इन्हें इशारा किया और फिर वो खुली हुई छत के किनारे पकड़कर बाजुओं की मदद से उचका और छत से बाहर निकलता चला गया। छत पर आते ही इसने सांस बाहर किया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ इन बेहोश फौजियों के सिवा और कोई नहीं था। इसी लम्हे तनवीर और सफदर तैरते हुए हॉल के नीचे आ गए। वो पर आते ही नीचे से असली का थैला भी ले आए थे। इमरान झुका और इसने इनसे थैला लेकर ऊपर खींच लिया और फिर इसने थैले समेत टैंकर से नीचे छलांग लगा दी। नीचे आते ही इसने थैला संभाला और इसे लेकर इस पहाड़ी की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ फौजी बेहोश पड़े थे। इमरान के जिस्म पर प्लास्टिक से बना हुआ लिबास था। इसने जिप खोलकर सबसे पहले प्लास्टिक वाला लिबास उतारा और उसे उल्टा करके लपेट कर पहाड़ी के एक कोह में डाल दिया। ऊपर से प्लास्टिक का लिबास होने की वजह से इसका नीचे वाला लिबास तेल लगने से महफूज था। सिर्फ इसके चेहरे पर तेल की स्याही दिखाई दे रही थी जिसे इमरान ने जेब से रुमाल निकालकर साफ करना शुरू कर दिया था। अच्छी तरह से साफ करने के बावजूद इसके चेहरे पर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इस दौरान इसके बाकी साथी भी टैंकर से निकलकर बाहर आ गए। इनके जिस्मों पर भी प्लास्टिक के बने हुए लिबास थे जो इन्होंने उतार कर इस कोह में डाल दिए जिस कोह में इमरान ने अपना लिबास छुपाया था। इन सबकी आंखों पर भी गागलेस लगे हुए थे। इन्होंने रुमाल से अपने चेहरे साफ कर लिए थे लेकिन सबके चेहरों पर तेल के धब्बे वाजे देखे जा सकते थे। हम सबसे पहले टैंकर की छत पर से तेल साफ करना है जो हमारे बाहर निकलने से छत पर जगह जगह लग गया है और जमीन पर भी तेल मौजूद है। इसे भी साफ कर दो। यहाँ ऐसी सफाई करो कि किसी को इस बात का इल्म ना हो सके कि टैंकर का एयर टाइट ढक्कन खोला गया है और हम इससे निकलकर बाहर आ गए हैं, इमरान ने कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए और वो दोबारा टैंकर की तरफ बढ़ गए। खावर और नोमानी टैंकर पर चढ़ गए और रुमालों से टैंकर पर लगा तेल साफ करने लगे और इन्होंने टैंकर का ढक्कन दोबारा बंद करके एयर टाइट कर दिया जबकि बाकी सब अपने कदमों के निशानों और लिबासों से जमीन पर टपकने वाले तेल पर मिट्टी डालकर निशान मिटाना शुरू हो गए। इमरान ने असले वाला थैला खोला और इसमें से असला निकाल निकाल कर अलग अलग करना शुरू कर दिया। फिर इसने अपने हिस्से का असला उठाया और इस पहाड़ी का बगौर जायजा लेने लगा जिसके करीब वो खड़ा था। थोड़ी ही देर में इसके साथी सारा काम करके वापस आ गए। इन्होंने वहाँ ऐसी सफाई कर दी थी कि वाकई अब वहाँ ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था जिससे ये पता चलता हो कि कोई टैंकर खोलकर बाहर आया है और वहाँ तेल बिखरा हुआ है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए हमें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, इमरान ने कहा। हमें छुपने की क्या जरूरत है, हमारे पास असला है। हम 20 कैंप में दाखिल हो जाते हैं और इन पर धावा बोल देते हैं, तनवीर ने कहा। हर काम का एक मखसूस वक्त होता है तनवीर, जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है, जूलिया ने कहा। तो तनवीर सर हिलाकर खामोश हो गया जैसे इसे जूलिया की बात समझ में आ गई हो। इस तरफ एक गार है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर गार अंदर से कुशादा हुआ तो हम इसमें छुप भी सकते हैं और इस तरफ आने वाले अफराद को चेक भी कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने दाएं तरफ एक गार का दहाना देखते हुए कहा। दहाना ज्यादा चौड़ा तो नहीं था लेकिन वो सिमटा कर एक एक करके अंदर जा सकते थे। इमरान के असबात में सर हिलाने पर कैप्टन चकी इस दहाने के करीब गया और अंदर झांकने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और इसे रोशन करके रोशनी अंदर डालने लगा और फिर वो झुका और गार में दाखिल हो गया। इमरान के कहने पर इन सब ने अपने अपने हिस्से का असला उठा लिया था। वो सब चौकन्ने थे क्योंकि पहाड़ी के बाएं तरफ एक नशीबी सड़क थी जो मुखालिफ फ्रेम से आ रही थी। वहां से किसी वक्त कोई आ सकता था और वो जहां खड़े थे इन्हें सड़क से आसानी से देखा जा सकता था। कैप्टन शकील, अगर ग्रीन सिग्नल दे तो तुम सब गार में चले जाना। हमें कम से कम रात होने तक यहीं रुकना है। हम कोशिश करेंगे कि अंधेरे में हम 20 कैंप के इर्द गिर्द कोई ऐसा रास्ता तलाश कर सकें कि किसी तरह हमारा कर्नल हैमर से टकराव ना हो। इससे टकराव की सूरत में हम इनकी नजरों में आ जाएंगे। फिर हमें जगह जगह रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि ब्लैक हार्ट को भी हमारी आमद का इल्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसकी फोर्स फौरन हरकत में आ जाएगी और हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक हार्ट की फोर्स हमें हर सूरत में रुकने और हलाक करने की कोशिश करेगी, जबकि हमें जल्द से जल्द इनके हेडक्वार्टर में पहुंचना है। इमरान ने कहा और इन सब ने असबाब में सर हिला दिए। क्या तुम हमारे साथ गार में नहीं जाओगे, जूलिया ने पूछा। मैं पहाड़ी पर जाकर ऊपर से देखता हूँ कि दूसरी तरफ क्या है हो सकता है कि ऊपर से दूसरी तरफ मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे जाए जहाँ से हम इसमें 20 कैंप से बच कर निकल सकते हो, इमरान ने कहा। इसी लम्हे कैप्टन शकीर दहाने से निकलता नजर आया और वो सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। बाहर से गार इतना चौड़ा नहीं है लेकिन अंदर इसमें बहुत जगह है और गार दूर तक चला गया है। गार साफ सुथरा है, मैंने चेकिंग कर ली है। मकड़ियों और इनके जालों के सिवा अंदर कोई खतरनाक चीज मौजूद नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। गार कहाँ तक जाता है, इमरान ने पूछा। काफी दूर तक जा रहा है, मैं आगे नहीं गया लेकिन गार की तवादत से मैं अंदाजा कह सकता हूँ कि इसका दूसरा दहाना यकीनन पहाड़ी की दूसरी तरफ ही निकलता होगा, क्योंकि अंदर खासी हवा भी मौजूद है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ठीक है, तुम सब अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इन चारों को भी अंदर ले जाओ, इनके लिबास हमारे काम आ सकते हैं, इमरान ने कहा। और उन्होंने इस बात में सर हिलाए और दहाने की तरफ बढ़ गए। सफदर, तनवीर, चौहान और खावर ने एक बेहोश फौजी को उठा लिया था और फिर वो इन्हें लेकर गार में चले गए और इमरान इधर उधर देखता हुआ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया। पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी। अभी इमरान पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हुआ ही था कि इसे बाएं तरफ से एक जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। इमरान तेजी से पलटा तो इसे इस तरफ से एक जीप आती दिखाई दी। जीप देखकर इमरान बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ मौजूद एक बड़ी चट्टान की ओट में हो गया। चट्टान खासी चौड़ी थी और वो इसके पीछे दुबक गया। अब जब तक कि कोई ऊपर ना आ जाता इसे देखा नहीं जा सकता था। जीप तेजी से दौड़ती हुई इस तरफ आ रही थी और फिर जीप टैंकर के करीब आकर रुक गई। इसमें एक अधेड़ उम्र फौजी के साथ ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान फौजी बैठा हुआ था। जीप रुकते ही अधेड़ उम्र फौरन उछल कर नीचे आ गया। ये क्या, जॉर्जटन और उसके साथी कहाँ हैं? मैंने इन्हें हुक्म दिया था कि वो इस टैंकर के पास रहेंगे, फिर वो टैंकर यहाँ इस तरह अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? अधेड़ उम्र ने इधर उधर देखते हुए हैरत भरे और इंतहाई गुस्से लहजे में कहा, मालूम नहीं सर, मैंने तो जॉर्जटन को 3 अफराद के साथ यहाँ आते देखा था, दूसरे शख्स ने कहा। तो फिर कहाँ गए वो? हर बात की एक हद होती है, मैं इनसे कैंप में जाकर पूछूंगा। तुम इस टैंकर को यहाँ से ले जाओ और इसे आग लगाकर किसी खाई में फेंक दो, अधेड़ उमर ने कहा, जिसकी आवाज से इमरान ने इसे पहचान लिया था। वो मेजर टॉम था। लेकिन सर, कर्नल साहब ने तो कहा था कि पहले इस टैंकर की चेकिंग करनी है, अगर इसमें कुछ हुआ तो इसे तबाह करना है, वरना नहीं इस शख्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे कर्नल साहब ने ही इस टैंकर को तबाह करने का हुक्म दिया है। इन्हें ब्लैक हार्ट एजेंसी से फोन आया था। कर्नल साहब को हुक्म दिया गया है कि वो डार्ट ऑयल कंपनी के किसी टैंकर को इसराइल में दाखिल ना होने दें। ब्लैक हार्ट की यहाँ कोई टीम आ रही है जो खुद इन टैंकरों की चेकिंग करना चाहती है, और कर्नल साहब ने इन्हें बताया था कि डॉट ऑयल कंपनी के दो ऑयल टैंकर हादसे का शिकार होकर तबाह हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि इससे पहले कि ब्लैक हार्ट एजेंसी की चेकिंग टीम यहाँ आए, इस टैंकर को तबाह कर दिया जाए, मेजर टॉम ने कहा। और इसकी बात सुनकर इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ब्लैक हार्ट एजेंसी की टीम का यहाँ आने का यही मतलब हो सकता था कि इन्हें किसी तरह से भी इस बात का इल्म हो गया है कि टैंकर में पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं। इसलिए इन्होंने टैंकर रुकवाने का हुक्म दिया था कि जब तक वो खुद आकर टैंकर चेक नहीं कर लेते, इन टैंकरों को वहाँ से ना जाने दिया जाए। ब्लैक हार्ट एजेंसी, ओ लेकिन सर, ब्लैक हार्ट एजेंसी इन टैंकरों को क्यों चेक करना चाहती है? हमने इन टैंकरों की हर तरह की जांच पड़ताल कर ली है, फिर इन्हें टैंकर चेक करने की क्या जरूरत है? दूसरे शख्स ने कहा। मैं नहीं जानता, इस बात से खुद कर्नल हेमर भी हैरान है। ब्लैक हार्ट एजेंसी के नंबर 2 कार फिल्ले ने इन्हें कॉल की थी और इसका हुक्म मानना कर्नल साहब की मजबूरी है, क्योंकि ब्लैक हार्ट एजेंसी का इसराइल पर मुकम्मल होल्ड है और इसराइल की तमाम एजेंसियां और फोर्सेस इनके अहकाम मानने की पाबंद है, मेजर टॉम ने मुंह बनाते हुए कहा। यस सर, ये तो है, ब्लैक हार्ट एजेंसी वाकई यहाँ किसी पर भी अपना हुक्म थोप सकती है। इनसे पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है, वो यहाँ हर किस्म की मनमानियां कर सकती है, दूसरे शख्स ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल कर्नल साहब ने इनको 18 टैंकरों का बताया है जो स्टॉक देकर दे में मौजूद है, इसलिए तुम जाकर फौरन इस टैंकर को आग लगाकर किसी गहरी खाई में फेंक दो ताकि इनके आने से पहले ये मसला खत्म हो जाए, मेजर टॉम ने कहा। और दूसरा शख्स असबात में सर हिलाकर टैंकर की तरफ बढ़ गया और फिर वो टैंकर में सवार हुआ और टैंकर स्टार्ट करके वहां से लेता चला गया। मेजर टॉम होंड पीछे चारों तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के भी तासीर साफ दिखाई दे रहे थे। इसका गुस्सा शायद इन फौजियों के लिए था जिन्हें इसने टैंकर की हिफाजत के लिए यहाँ भेज रखा था, और अब वो सब वहाँ से गायब हो गए थे। कहाँ जा सकते हैं वो चारों, मेजर टॉम ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इमरान ने अचानक से बुरी तरह से चौंकते हुए देखा। मेजर टॉम की नजरें गार के इस दहाने पर जम गई थी जिसमें इमरान के साथी दाखिल हुए थे। मेजर टॉम चंद लम्हे दहाने की तरफ देखता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। इसके चौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे इसे शक हो गया हो कि गार में कोई मौजूद है। इसकी छठी हिस वाकई बेहद तेज थी जिसने इसे गार की तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि गार की तरफ से ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी जो इसके चौंकने का बायस बनती। अगर गार में से कोई आवाज आती तो वो आवाज इमरान भी सुन लेता, इसलिए मेजर टॉम का चौंकना इसकी छठी हिस की ही वजह हो सकती थी। मेजर टॉम आगे बढ़ा और फिर वो गार के दहाने के नजदीक आ गया। इसने दाएं तरफ होलिस्टर से अपना रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था और दहाने के साथ एक चट्टान के साथ लग गया था। इसके कान दहाने की तरफ ही थे जैसे वो अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। चंद लम्हे वो अंदर से आवाज सुनने की कोशिश करता रहा, फिर वो सीधा हवा और दहाने से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर शायद अंधेरा था क्योंकि इसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान चंद लम्हे से देखता रहा, फिर इसे अचानक एक ख्याल आया। वो तेजी से चट्टान की आड़ से निकला और निहायत एहतियात से चट्टाने फैलांगता हुआ नीचे जाने लगा। वो इस अंदाज में चट्टाने फैलांग रहा था कि किसी तरह इसके कदमों की आवाज मेजर टॉम के कानों तक न पहुंच सके। लेकिन मेजर टॉम इसकी तौके से कहीं ज्यादा होशियार था। इसने अचानक सर उठाया और फिर जैसे इसकी नजर पहाड़ी से नीचे आते हुए इमरान पर पड़ी, वो बौखलाए हुए अंदाज में सीधा हुआ। इससे पहले कि वो रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ करता, इमरान ने अचानक इस पर छलांग लगा दी और उड़ता हुआ पूरी कुवत से मेजर टॉम से आ टकराया। मेजर टॉम के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो पुश्त के बल गिर गया। इसके हाथ से रिवॉल्वर निकल कर दूर जा गिरा था। इमरान इसके ऊपर था। मेजर टॉम ने इसे खुद पर से धकेलना चाहा, लेकिन इसी वक्त इमरान का एक जोरदार पंच इसके मुंह पर पड़ा और मेजर टॉम एक बार फिर चीख उठा। इमरान का दूसरा पंच ठीक इसकी कनपट्टी पर पड़ा और मेजर टॉम की आंखें बंद होती चली गई। इमरान ने इधर उधर देखा। मेजर टॉम का साथी टैंकर लेकर दूसरी तरफ चला गया था। इमरान उठा और उसने मेजर टॉम का रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाला और फिर वापस मेजर टॉम की तरफ आ गया। इसने मेजर टॉम के दोनों पहलुओं में हाथ डालकर इसे उठाया और फिर इसे लेकर गार की तरफ बढ़ता चला गया। दहाने के करीब आकर इसने मखसूस अंदाज में सीटी बजाई तो चंद ही लम्हों में सफदर दहाने की तरफ आ गया। ये कौन है? सफदर ने इमरान के हाथों में मेजर टॉम की तरफ हैरत से देखते हुए पूछा। इसे अंदर ले जाओ, मैं ऊपर से अपना असलह लेकर आता हूँ, वापस आकर बताऊंगा कि ये मौसूफ कौन है, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया और उसके हाथों से मेजर टॉम को ले लिया और उसे गार के अंदर ले गया। इमरान दोबारा पहाड़ी पर चढ़ा और चट्टान के पीछे रखा हुआ अपना असला लेकर वापस आ गया। गार में दाखिल होकर वो आगे बढ़ता चला गया। शुरू में गार वाकई तंग था, लेकिन आगे जाकर गार खासा चौड़ा हो गया था। इसे अंदर आते देखकर सफदर ने टॉर्च रोशन कर दी थी। वो सब गार के खुले हिस्से में मौजूद थे, जहाँ चार फौजियों के साथ मेजर टॉम भी एक तरफ जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा था। मेजर टॉम को तुम कहाँ से लाए हो? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। बाहर एक जीप मौजूद है और टैंकर को यहाँ से हटा दिया गया है। शायद मेजर टॉम इस तरफ किसी साथी के साथ आया होगा और मेजर टॉम ने इसे टैंकर ठिकाने लगाने के लिए भेज दिया होगा और इमरान साहब ने मौका देखकर इसे छाप लिया होगा, सफदर ने कहा, जिसने बाहर मौजूद जीप देख ली थी। सफदर का तजिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मेजर टॉम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए जूलिया से मुखातिब होकर कहा। इसके सीने पर इसके रैंक के साथ इसका नाम भी लिखा हुआ है, जूलिया ने जवाब दिया। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या उन्होंने टैंकर की चेकिंग की थी? कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, मेजर टॉम ने आते ही इसे अपने साथी को हुक्म दिया था कि वो जाकर टैंकर को फौरन ठिकाने लगा दे। इसका साथी टैंकर को आग लगाकर किसी खाई में फेंकने के लिए गया है, इमरान ने जवाब दिया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। ओ, फिर तो अच्छा हुआ है कि हम टैंकर से बाहर आ गए थे, वरना शायद हमें टैंकर से निकलने का मौका ही ना मिलता और हम टैंकर के साथ जलते हुए खाई में जा गिरते, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी और चेकिंग किए बगैर टैंकर जलाकर खाई में फेंकने का हुक्म क्यों दिया है? हालांकि कर्नल हैमर ने कहा था कि टैंकर की अंदर से चेकिंग की जाए और अगर इसमें कोई मशकूक चीज हो तब इस टैंकर को तबाह किया जाए। अब जबकि हम टैंकर से निकल आए थे तो टैंकर में क्या मशकूक चीज बाकी रह जाती थी जिसकी वजह से इन्होंने टैंकर को तबाह करने के लिए भेज दिया है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कर्नल हैमर ब्लैक हार्ट एजेंसी से अपना झूठ छुपाना चाहता है, इमरान ने कहा। ब्लैक हार्ट एजेंसी? झूठ क्या मतलब? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने इन्हें वो सारी बातें बता दी जो मेजर टॉम ने अपने साथी को बताई थी। ओ, इसका मतलब है कि ब्लैक हार्ट एजेंसी को हमारे यहाँ आने की रिपोर्ट मिल चुकी है, जूलिया ने कहा। हाँ, ब्लैक हार्ट एजेंसी के हाथ बहुत लंबे हैं और इनकी आंखें और कान हर वक्त खुले रहते हैं। वो भी हमारी तरह अपनी तरफ बढ़ने वाले खतरे की बू बहुत पहले से सूंघ लेते हैं, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। कहने ये मालूम हो गया होगा कि हम एक ऑयल टैंकर में छुप कर यहाँ आए हैं, तनवीर ने पूछा। यकीनी बात है, इसीलिए तो काकफिल्ले ने कर्नल हैमर को हुक्म दिया है कि वो टैंकर इसराइल ना जाने दें जब तक कि इसकी चेकिंग करने वाली टीम वहां पहुंचकर इन टैंकरों की खुद चेकिंग ना कर ले, इमरान ने कहा। इनका मकसद अगर हमारी हलाकत का है तो वो यहाँ पूरी तैयारी से आएंगे, कैप्टन शकीर ने कहा। जाहिर सी बात है, ब्लैक हार्ट के पास इस हद तक इख्तियारात हैं कि वो हमें हलाक करने के लिए इस पूरे 20 कैंप को भी तबाह कर सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ओ, तो हमें यहाँ छुपे नहीं रहना चाहिए, इसके पास ऐसे ऐसे साइंसी आलात भी तो हो सकते हैं जिनकी मदद से वो हमारे यहाँ मौजूदगी चेक कर सकें। अगर ऐसा हो गया तो वो इस पूरी पहाड़ी को ही उड़ा देंगे, खावर ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसलिए मैं मेजर टॉम को यहाँ उठा लाया हूँ। इसका कद काठ मेरे जैसा ही है। मैं इसका मेकअप करके 20 कैंप में जाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ब्लैक हार्ट एजेंसी यहाँ हमें तलाश करने के लिए क्या इकदाम करने वाली है। इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि 20 कैंप से कोई हेलीकॉप्टर उड़ा लाऊं ताकि हम सब इसमें सवार होकर यहाँ से निकल जाएं। इसके लिए मैं ब्लैक हार्ट एजेंसी के ही किसी हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने की कोशिश करूंगा, इमरान ने सोचते हुए कहा। यहाँ 4 अफराद और भी हैं, अगर आप कहें तो हम में से 4 अफराद आपके साथ जा सकते हैं, सफदर ने कहा। हाँ, देख लो इनमें से किस किस का कद काठ तुम में से मिलता है, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। फिर अचानक इसकी नजरें जूलिया के चेहरे पर पड़ी तो वो बेख्तियार उछल पड़ी। क्या हुआ, इसे उछलते देखकर जूलिया ने हैर भरे लहजे में कहा। बाकी सब भी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे, जैसे इन्हें इमरान के इस तरह उछलने की वजह समझ में न आई हो। वो तेजी से जूलिया की तरफ बढ़ा, इसने जूलिया की आंखों में आंखें डाली और इसकी आंखें गौर से देखने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो, जूलिया ने इसे गौर से गौर घूर कर कहा। एक मिनट, पलकें मत झपकाना, इमरान ने तेज लहजे में कहा। वो चंद लम्हे गौर से जूलिया की आंखों में देखता रहा, फिर इसके चेहरे पर कदरे परेशानी के तासरात नमूदार हो गए। बात क्या है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो गए हो, जूलिया ने इसे परेशान होते देखकर कहा। अभी बताता हूँ, इमरान ने कहा और फिर इसने सफदर की तरफ देखा और इसकी आंखें गौर से देखने लगा। सफदर के बाद इसने कैप्टन शकील और फिर तनवीर की आंखें चेक की तो इसकी तशवीश और ज्यादा बढ़ गई। सफदर, तुम एक काम करो, मेरी आंखों को गौर से देखो जल्दी, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया और उसकी आंखों में देखने लगा। क्या तुम्हें मेरी आंखों के किनारों पर हल्के हल्के ब्लू स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इमरान ने पूछा। ब्लू स्पॉट्स, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा और गौर से इसकी आंखों के किनारों की तरफ देखने लगा। ओ हाँ, ब्लू स्पॉट्स तो हैं, लेकिन ये बहुत हल्के हैं, बहुत गौर से देखने पर इनका पता चलता है, सफदर ने कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। तुम सबकी आंखों के किनारे भी इसी तरह नीले नीले हैं और वाकई ये इस कदर हल्के हैं कि मैं भी इन्हें अब तक चेक नहीं कर सका था। अब अचानक सफदर ने टॉर्च ऊपर की तो इसकी रोशनी जूलिया की आंखों में पड़ी थी, जिससे मुझे इसकी आंखों में हल्के हल्के चंद ब्लू स्पॉट नजर आ गए थे, इसीलिए मैं चौंका था और मैंने तुम सबकी आंखें चेक की थी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ये नॉवेल डेविल माइंड का बाकी हिस्सा पार्ट 11 में समाप्त फरमाएं।